मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज वैशाखी का भी उत्सव मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है और यह त्यौहार सीधे सीधे हमारे फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, यानी कि फसल पक कर तैयार हो चुकी है। सभी के हृदय में उस पकी हुई फसल की जो खुशी होनी चाहिए वह उमड़ रही है, तो इस तरह से इस त्यौहार को पूरी ऊर्जा के साथ मनाया जाता है, पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना वायरस के बहुत ही आप कह लीजिए चुनौतीपूर्ण घड़ी में हम लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ऊर्जा की ही है, उत्साह की ही है। हम सबके अंदर जितनी अधिक ऊर्जा होगी, जीवन के प्रति जितना अधिक उत्साह होगा, मान करके चलिए कि कोरोना वायरस उतनी ही आसानी के साथ परास्त हो सकेगा। और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर, यानी कि वैशाखी के मौके पर, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और सच पूछे तो अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हमारी इस आंतरिक ऊर्जा को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, लगातार सुदृढ़ करता रह, ताकि हम इस गंभीर संकट से बड़े आराम से निकल सके। तो मित्रों, आइए इसी से ही जुड़ी हुई मैं बातें पिछली बार भी कर रहा था और वह था डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन के सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगता है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत लगता है दोस्तों, जो सीधे सीधे सच पूछिए तो हमारी कहीं ना कहीं गीता से जुड़ जाता है, और वह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि इस पृथ्वी पर वही रहेगा जो फिट होगा। किसके प्रति फिट होगा? यानी कि जिसका तालमेल, जिसका सामंजस्य प्रकृति के साथ बैठेगा। देखिए, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर बहुत लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, आलोचना इस मायने में कि इसका मतलब है कि ये तो जंगल राज्य हो गया, क्योंकि जंगल में वही रहेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, बाकी जो छोटे लोग होंगे बेचारे, जो कमजोर पशु होंगे, वो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां बात एक अलग संदर्भ में कही जा रही है, हमें उस संदर्भ को समझना होगा। हम इसके बहुत ही ज्यादा दार्शनिक व्याख्या पर नहीं जाते हैं, हम अपने केवल जीवन के लिए कुछ इससे तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा सा है दोस्तों कि जो पूरी की पूरी प्रकृति है, तो प्रकृति तो बहुत शक्तिमान है। आप देखिए कि वायरस को देख लीजिए, आंखों से दिखाई भी नहीं देता, देख भी नहीं सकते, और उसके सामने पूरा का पूरा विश्व, जो विज्ञान की दृष्टि से इतना आगे बढ़ चुका है, जिसके पास पता नहीं अणु बम, परमाणु बम, क्या क्या नहीं है, वो आज बिल्कुल विवश सा दिखाई दे रहा है। कितना परेशान है, लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रकृति कितनी विराट है, कितनी विशाल है, कितनी शक्तिशाली है, और उसके सामने हम सब की औकात है ही क्या? तो क्या ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी? क्या ये प्रकृति हमें नष्ट कर देगी या हम अपने आप को नष्ट कर लेंगे? ये सोचने की बात है। नहीं, प्रकृति शुरू से लेकर के अब तक लगातार विकसित होती रही है। अब ये बात अलग है कि औद्योगिक संस्कृति के कारण, औद्योगिक उत्पादन के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और उससे एक नए किस्म का संकट हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज सामान्य तौर पर यही देखा जा रहा है कि लाखों करोड़ों साल से प्रकृति निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, प्रकृति नष्ट नहीं हुई है। हाँ, प्रकृति में वो चीजें नष्ट जरूर हो गई हैं जिनका आज कोई लेखा जोखा नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलते, हम अनुमान ही लगाते हैं, और कुछ कुछ प्रमाण मिल जाते हैं तो उसके आधार पर हम निश्चित तौर पर कह पाते हैं वे नष्ट हुए हैं जिन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाला नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। जब मैं कह रहा हूं प्रकृति के अनुकूल ढाला नहीं, तो आप ये मत समझिए कि प्रकृति के सामने सरेंडर नहीं कर दिया। ढाला नहीं में तो यही लगता है ना कि भैया ठीक है, जो तू कह रहा है वही सही है। नहीं, यहां जो शब्द है वो फिटेस्ट, हमने ऐसा नहीं कि सरेंडर कर दिया, हमने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाया, अपने को मजबूत बनाया, और प्रकृति ने जो कुछ भी हमारे सामने परिस्थितियां पैदा की, नकारात्मक परिस्थितियां पैदा की, हमको कमजोर करने के लिए, हमको नष्ट करने के लिए जो उसने उपाय किए, उन उपायों को कमजोर करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि उसके सामने डटे खड़े रहने के लिए हमने अपने आप को मजबूत बनाया। तो यहां बात सरेंडर करने की नहीं है, यहां बात खुद को मजबूत बनाने की है। दोस्तों, आप पूरे की पूरी प्रकृति का अवलोकन कीजिए तो आपको ये बड़ी खूबसूरत सी चीज दिखाई दे जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सी चीज दिखाई दे जाएगी। उदाहरण के तौर पर मेरे घर के सामने ही, हमारे घर के सामने ही एक पार्क है, है ना। पार्क का जहां से खत्म होता है, पार्क का एक सिरा तो हमारे घर के सामने खुलता है और उसका जो अंतिम छोर है वो एक मैदान में खुलता है, यानी कि उधर पूरा का पूरा मैदान है या ओपन स्पेस है। अब आप देखिए कि क्या है कि पार्क में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, है ना। नीम का पेड़ भी है, जामुन का पेड़ भी है, आंवले का पेड़ भी है, अलग अलग बड़े खूबसूरत पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है, फलदार पेड़ लगाए हैं हम लोगों ने सभी। अब होता यह है कि उधर से जो हवा आती है मैदान साइड से, वो पार्क में घुसती है और इसके बाद हम लोगों के घरों तक पहुंच जाती है हवा। तो अगर आप उन पेड़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारे के सारे जो पेड़ हैं वे हम लोगों के घर की तरफ झुके हुए से दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये पेड़ थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। अब आप देखिए कि ये टेढ़े क्यों हो गए हैं, आपको लगेगा कि ये सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, ये हो ये रहा है कि जब उधर से खुली हुई हवा आती है तो पेड़ कभी पौधा था, उस समय तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा झुका लिया और झुकाने के साथ ही उसने अपनी मजबूती भी बनाए रखी। अगर वो झुकता चला जाता तो फिर वो जमीन पर उखड़ जाता, जमीन से सड़ चुका होता, उस पेड़ का अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन उसने सामंजस्य बैठाया, सामंजस्य इस रूप में बैठाया कि भाई उधर से लगातार हवा आ रही है तो मैं डटकर खड़ा नहीं रहता बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट खड़ा रहूंगा तो ये पेड़ जो है ना उखड़ जाएगा, क्योंकि ये कभी पौधा भी था, उसको संभाल नहीं पाएगा, उस हवा के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू किया लेकिन वो खड़ा भी रहा और उसी का परिणाम है कि आज वो पेड़ के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, ये जो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो इसी बात को दर्शाता है कि हम अपने आप को कितना मजबूत बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम भारतीयों के पास इसकी बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी ताकत है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारा जो जीवन दर्शन है वो जीवन दर्शन बहुत जबरदस्त रूप से हमें मजबूत बनाता है। आप देखिए कि किसी भी गांव वाले से चले जाइए, वो कहेगा होई है वही जो राम रची राखा, भैया वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। अब आप देख रहे हैं, होई है वही जो राम रची राखा, भगवान जैसा रखेगा वही होगा भैया। तो जब आप ये सोच लेते हैं, भले ही देखिए इसमें एक आपको अवैज्ञानिक चीज बात मिल जाएगी, इसके आपको दूसरी कमजोरियां भी मिल जाएंगी इसके कारण कि हम ज्यादा भाग्यवादी हो गए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें कितनी बड़ी ताकत देता है? भैया क्या डरना है कोरोना वोरोना से, थोड़ी सी सावधानी रखो, अदरवाइज तो वही होगा जो भगवान ने लिख रखा है, ये आपको बहुत बड़ी ताकत देता है। तो भारतीय दर्शन को अगर सही तरीके से लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंतर्गत जो मानसिक मजबूती हमें चाहिए वो जबरदस्त किस्म की मानसिक मजबूती हमें प्रदान करता है। इसीलिए आप देखिए कि भारत में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको भाग दौड़ हाय तोबा चीख चिल्लाहट बाप रे अब क्या होगा ये सब चीजें सुनाई नहीं दे रही होंगी। हमारा जो संकट आपको कहीं कहीं पढ़ने को दिखाई देता होगा वो है कि पेट कैसे भरे, रोजगार कैसे चलता रहे, आए जाए कैसे, कोई बीमार हो गया तो अस्पताल कैसे पहुंचे, इस तरह की रोजमर्रा की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के बारे में हम परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे जीवन का क्या होगा इस बारे में हिंदुस्तान आपको ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दे रहा होगा, और इसका कारण है उसकी अपनी मानसिक मजबूती जो उसे उसके अपने जीवन दर्शन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम मजबूत हैं और हमारी यह मजबूती कोरोना वायरस को खत्म करके ही रहेगी। आप सब हिम्मत बनाए रखें, लगातार अपने को फिट बनाए रखें, अच्छे तरीके से भोजन करें, पूरी नींद लें, नकारात्मकता से दूर दराज का कोई संबंध न रखें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, जीवन का वैशाखी की तरह उत्सव मनाएं। आप देखेंगे कि ये तूफान आया है, तूफान कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं, यह भी वक्त गुजर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।